अध्याय 10 प्राचीन भारत में अस्पृश्यता। भूमिका। ऋग्वेद में आर्यों ने अपने विपक्षी अनार्यों के लिए अनेक निरादर सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, जिनसे आर्यों और अनार्यों की शारीरिक व सांस्कृतिक भिन्नताएं स्पष्ट हैं। इन शब्दों से यह तो स्पष्ट है कि आर्य अनार्यों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, किंतु वे अपने विपक्षियों को अस्पृश्य थे। इसका कोई साक्ष्य ऋग्वेद में नहीं मिलता। कुछ आदिवासी आज भी शमशान में काम करने व शवों को ले जाने वाले व्यक्तियों और रजस्वला स्त्री को अस्पृश्य समझते हैं। इस आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि अस्पृश्यता की प्रथा अनार्यों में पहले से विद्यमान थी। जब आर्य और अनार साथ साथ रहने लगे तो आर्यों ने भी इस प्रथा को अपना लिया। बाद में जो भी व्यक्ति घृणित कार्य करते थे उसको अस्पृश्य समझा जाने लगा। इस प्रकार यह प्रथा ब्राह्मणों की सूझ का परिणाम न थी, यह तो आर्यों को आदिवासियों से मिली थी। जब दो संस्कृतियों का समन्वय होता है तो दोनों जातियां ही एक दूसरे के संस्कृतियों की कुछ विशेषताओं को अपना लेती हैं। यह स्वाभाविक है, इन दो संस्कृतियों के समन्वय से ही उस संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है जिसे हम अब हिंदू संस्कृति कहते हैं और जिसके लिए अस्पृश्यता की भावना एक कलंक है। प्राचीन भारत में अस्पृश्यता। नंबर एक, वैदिक काल लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अस्पृश्यता के विकास में कुछ अन्य तथ्यों ने भी योगदान किया। प्रत्येक संस्कृति अपने को अन्य संस्कृतियों में श्रेष्ठ समझती है। एक संस्कृति के मनुष्य अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से अपनी संस्कृति को अछूता रखने के लिए कुछ नियम बनाते हैं। उन नियमों में अन्य संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, भोजन करना आदि सभी क्रियाएं निषिद्ध घोषित कर दी जाती हैं। उत्तर वैदिक काल में अनेक अनारी व्यक्ति आर्य समुदाय का भाग बन गए थे, किंतु उनकी गणना चतुर्थ वर्ण अर्थात सूत्रों में की जाती थी। ब्राह्मण ग्रंथों में उनके स्पर्श से बचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं से भारतीय समाज में अस्पृश्यता का प्रारंभ हुआ। काठक संहिता में लिखा है कि शूद्र को अग्निहोत्र में प्रयुक्त होने वाले दूध को गाय से नहीं दुहना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ के लिए अभिषिक्त व्यक्ति को शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए। इसी ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार प्रवर्ग्य धार्मिक कृत्य करने वाले व्यक्ति को शूद्र और स्त्री के स्पर्श से बचना चाहिए। शतपथ और तैतरीय ब्राह्मणों के अनुसार राजसीय यज्ञ के समय अभिसिंचन में शूद्र को भाग लेने का अधिकार नहीं है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में ही कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनमें शूद्र को यज्ञ करने और यज्ञों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में शूद्र आर्यों के सामुदायिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्य वर्णों में व्यक्तियों के साथ भाग लेते थे, उन्हें अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल के अंत में कुछ शूद्रों को अस्पृश्य समझा जाने लगा और उन्हें कुछ धार्मिक कृत्यों से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार इस काल में अस्पृश्यता का आरंभ तो हो गया, किंतु यह प्रथा अपने विकसित रूप में इस काल में विद्यमान न थी। नंबर दो, वेदोत्तर काल लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। धर्म सूत्रों में अस्पृश्यता की भावना अपने विकसित रूप में मिलती है। गौतम और अपस्तंभ के अनुसार ब्राह्मण के लिए शूद्र को अपने हाथ से भोजन कराना उचित नहीं है, उसे यह कार्य अपने दास के द्वारा कराना चाहिए। अपस्तंभ ने स्पष्ट लिखा है कि यदि भोजन करते समय किसी ब्राह्मण को कोई शूद्र छू ले तो ब्राह्मण को तुरंत भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए, क्योंकि शूद्र से स्पर्श से वह ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। प्रायः सभी धर्म सूत्रकारों का मत है कि ब्राह्मण को शूद्र का दिया भोजन नहीं खाना चाहिए। इसका कारण यह था कि भारत में अति प्राचीन काल से यह धारणा थी कि मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसे ही उसके विचार बनते हैं। शूद्र का भोजन अपवित्र समझा जाता था और उसको खाने से ब्राह्मण के विचार भी दूषित हो जाते हैं, किंतु इस काल शूद्रों के आर्यों के निरीक्षण में भोजन बनने का अधिकार प्राप्त था। इसका यह अर्थ है सभी शूद्र अभी पूर्णतः अस्पृश्य नहीं समझे जाते थे। नंबर का बोधायन ने लिखा है कि कि जो विद्यार्थी सफलता प्राप्त करना चाहे उसे शूद्रों और स्त्रियों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। उसी के अनुसार स्नातक को शूद्र और स्त्रियों के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। सत्कारों का यह भी मत है कि जो व्यक्ति यज्ञ के लिए अभिषिक्त हो उसे शूद्रों से बात नहीं करनी चाहिए। सांख्यायन सौत्र सूत्र के अनुसार शूद्र को वाजपेय यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं है, किंतु वे उदनासव और महाव्रत नाम की धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते थे। इससे स्पष्ट है कि इस काल में शूद्रों को पूर्णतया अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। नंबर था, इस काल में निर्धारित धार्मिक कृत्यों को ना करने वाले व्यक्ति को पतित गिना जाता था। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों के भी किसी परिवार में यदि 3 पीढ़ी तक उपनयन संस्कार ना हो तो उस परिवार को पतित समझा जाता था। उस परिवार के सदस्यों को देखना भी अशुभ समझा जाता था। संभवतः पतित परिवार के सदस्यों को गांव या शहर के बाहर रहना पड़ता था। पाणिनि ने सूत्रों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। निर्वसित सूत्रों को अस्तपित समझा जाता था। उनको यदि आर्य अपने बर्तन में भोजन करा दे तो बर्तन दूषित हो जाते थे। पाणिनि ने चंडालों और सूत्रों की गणना निर्वसित सूत्रों में की है। निश्चय ही निर्वसित सूत्र वे थे जिनके रहन सहन में गंदगी पाई जाती थी। अनिर्वसित सूत्र को अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। अश्वलायन श्रौत सूत्र में यवन और काम्बोजों की गणना निर्वसित सूत्रों में की गई है। ये आर्य समुदाय का भाग नहीं थे, अतः इन्हें अस्पृश्य समझा जाता था। घा गौतम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति चंडाल या जाति से बहिष्कृत व्यक्ति का अस्पर्श होने पर स्नान कराना चाहिए। अपस्तंभ का मत था कि ब्रह्मो उग्रो और निषादों को वैदिक साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए। बाह्य उग्र और निषाद सभी आदिम जातियां थी जो घृणित कार्य करती थी। अपस्तंभ के अनुसार चांडाल के देखने और छूने से प्रत्येक वस्तु दूषित हो जाती है। इसका यह अर्थ है कि चांडालों के देखने की गणना निर्वसित सूत्रों में की जाती थी। इसलिए कुछ सूत्र ग्रंथों में लिखा है कि चांडाल के स्पर्श के दोष से मुक्त होने के लिए सर्वस्थ स्नान करना चाहिए। चंडाल के विषय में इसी प्रकार के विचार कुछ अन्य ग्रंथों में पाए जाते हैं। वशिष्ठ का मत है कि अंत्यजों का साक्ष्य उन्हीं लोगों के वाद विवाद में प्रमाण माना जा सकता है। महाभाष्य से हमें ज्ञात होता है कि चांडाल नगरों और गांवों के बाहर रहते थे। स्वभावतः ये आदिवासी थे, इसलिए आर्य समुदाय उन्हें अस्पृश्य समझता था। जातकों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि चंडालों को अस्तपित समझा जाता था। चित्तभूत जातक से ज्ञात होता है कि चंडाल का देखना भी अशुभ माना जाता था। एक अन्य जातक से पता लगता है कि ब्राह्मण शूद्र से इसलिए दुर्भागता है कि शूद्र की छुई हुई वस्तु उसे छू ना जाए। नंबर अंगा, पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में चंडालों के अतिरिक्त 4 अन्यहीन जातियों अर्थात निषाद, वेड़, रथकार और पुक्कस का उल्लेख मिलता है। ये आर्यों के 4 वर्णों का भाग ना थे, अतः इन्हें बाह्य कहा गया है। पुक्कस, वेड़ और निषाद संभवतः अनार्य थे। निषाद भी अस्पृश्य समझे जाते थे, किंतु वेड़ों को चंडालों की भांति अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। संभवतः आर्यों के उच्च समाज में कालांतर में शारीरिक श्रम और ऐसे व्यवसायों को जिनमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता थी है समझा जाने लगा, इसलिए वेड़ों और रथकारों को भी अस्पृश्य समझा जाने लगा। हमें ज्ञात है कि उत्तर वैदिक काल में तक्षक और रथकार की गणना रथनियों में की गई है। राजा स्वयं रथकार के घर जाकर ठहरता था, इसलिए उस समय उसके अस्पृश्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। धर्म सूत्रों में अस्पृश्यता का मूल कारण वर्ण संकर बतलाया है, किंतु यह तर्क संगत नहीं प्रतीत होता। अस्पृश्यता की भावना के मूल में प्रमुख कारण आर्यों की वह इच्छा थी कि वे अपवित्र कार्य करने वाले व्यक्तियों के संपर्क से बचकर अपनी सांस्कृतिक पवित्रता की रक्षा कर सके। वर्ण संकर को अस्पृश्यता का मूल कारण मानना एक भारी भूल होगी। शिकारी और चिड़ीमार जैसी आदिम जातियां सांस्कृतिक दृष्टि से आर्यों से बहुत पिछड़ी हुई थी। गंदे काम करना या ऐसे व्यवसाय करना जिनमें हाथ से काम करना पड़े है समझा जाने लगा। अतः ऐसे व्यवसायों को करने वाले व्यक्ति सभी धीरे धीरे अस्पृश्य समझे जाने लगे। नंबर 3, मौर्य सुंग संक कुषाण सातवाहन काल। लगभग 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति और महाभारत में कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनसे प्रकट होता है कि इस काल के आरंभ में शूद्रों को अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। मनु ने ब्राह्मणों के शूद्रों के साथ विवाह का भी समर्थन किया है। भोजन के विषय में मनुस्मृति से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण उन शूद्रों को भोजन करते थे जो श्राद्ध करते थे। उसने शूद्र अध्यापकों और विद्यार्थियों का भी उल्लेख किया है, किंतु दूसरे स्थलों पर यह निषिद्ध बतलाया है। उसके अनुसार ब्राह्मणों को शूद्रों से किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहिए। स्नातक को ना तो शूद्र के साथ यात्रा करनी चाहिए और न उनका भोजन करना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस काल में धीरे धीरे शूद्रों को अस्पृश्य समझा जाने लगा। प्रारंभ में अस्पृश्यता उनके साथ थी जो गंदे काम करते थे, न कि समस्त शूद्र जाति से। नंबर का प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में चंडाल, वीण, निषाद, रथकार और पुक्कस को हीन जाति कहा है। इनमें जो आर्य समुदाय का भाग बन गए थे शूद्र कहलाते थे। इन्हें पाणिनि ने अनिर्वसित कोष्टक में अबहिष्कृत कहा है। जो आर्य समुदाय का भाग नहीं बन गए थे वे निर्वसित कहलाते थे। अस्तलायन सूत्रों में यवनों और कम्बोजों को निर्वसित कहा है। वे विदेशी थे और विदेशी होने की वजह से वे लोग अस्पृश्य समझे जाते थे। संभवतः इसलिए भारतीय आर्य उन्हें अपने बर्तनों में भोजन नहीं कराते थे। नंबर खा कौटिल्य ने केवल चंडालों को अस्पृश्य कहा है। उसने लिखा है कि यदि चंडाल किसी आर्य स्त्री को छू ले तो राजा को उस पर 100 पड़ जुर्माना करना चाहिए। उसने वेड़, निषाद, रथकार और पुक्कस की अस्पृश्यों में गणना नहीं की है। इसका यह अर्थ है कि इस काल में रथकारों और वेड़ों, पुक्कसों और निषादों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। चंडालों, अत्यों और अंतयावासियों के साथ ठहरना निषिद्ध माना गया। श्राद्ध के समय चंडाल ब्राह्मणों को नहीं देख सकते थे। उनके अनुसार चंडाल और सोपाक गांव के बाहर रहें और अपात्र माने जाएं। वे मृत पुरुषों के कपड़े पहने, टूटे हुए बर्तनों में भोजन करें, लोहे के आभूषण पहने और जगह जगह मारे फिरे। धार्मिक क्रिया करने वाला व्यक्ति उसे किसी प्रकार का संपर्क न रखे और उन्हें स्वयं अपने हाथ से भोजन न दे, किसी अन्य पुरुष के द्वारा टूटे बर्तनों में भोजन दे। वे रात्रि के समय शहर या नगर में ना घूमें, दिन के समय भी राजा द्वारा निर्धारित पोशाक पहन कर ही वे शहर या गांव में आ सकते थे। वे उन व्यक्तियों के शव को ले जाते थे जिनके कोई संबंधी नहीं होते थे और मृत्यु दंड पाने वाले अपराधियों को फांसी देते थे और उन अपराधियों के कपड़े, बिस्तर, आभूषण आदि पहनते थे। महाभारत में भी चंडालों के लिए इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। निषाद मछली मारकर और मेद, अंध्र, चुंच और मद्र का शिकार करके अपना निर्वाह करते थे। अयोग्य लकड़ी काटते थे। उग्र और पुक्कस भीलों में रहने वाले जानवरों को मारते थे। भिगवड़ चमड़े का कार्य करते थे। वेड़ ढोल बजाकर आजीविका कमाते थे। ये सब गांव के बाहर शमशानों, पहाड़ों या बागों में रहते थे। ये सब गंदे कार्य करते थे, इसलिए मनु ने इन सब जातियों के गांव या नगर से बाहर रहने का विधान किया है। इन सब आदिम जातियों और गंदे कार्य करने वालों में से अनेक सूत्रों में मिल गए होंगे। इन सब आदिम जातियों के वे व्यवसाय थे जिन्हें उच्च वर्ग के लोग अपनाना उचित नहीं समझते थे। वे कुत्तों तक का मांस खाते थे। उनके कपड़े भी मैले कुचैले होते थे और उनके संपर्क में नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनका जीवन स्तर बहुत नीचा था। ऐसा प्रतीत होता है कि अस्पृश्यता अपने पूर्ण विकसित रूप में मौर्य काल के अंत में प्रकट हुई। तभी तो मनु ने शूद्रों के विरुद्ध इतने कठोर नियम बनाए हैं। संभवतः यह वह आर्य संस्कृति को आदिम जातियों के दूषित प्रभाव से बचाना चाहता था। जातकों में अस्पृश्यता अपने भयावह रूप में दिखलाई देती है। नंबर का जातकों से ज्ञात होता है कि यदि चंडाल गांव में प्रवेश करते तो डंडा बजाकर उन्हें अपने आने की सूचना देनी होती थी। यदि वे बिना सूचना दिए नगरों में घुसते तो नगर निवासी उनको पीटते थे क्योंकि उनके स्पर्श से वे दूषित हो जाएंगे, ऐसी नगर निवासियों की धारणा थी। नंबर चार, स्मृतियों का काल 200 ईसा से 500 ईसा तक। इस काल की स्मृतियों में लिखा है कि ब्राह्मण को शूद्र का भोजन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ निकलता है कि क्षत्रिय और वैश्य शूद्र को अस्पृश्य नहीं समझते थे और उनका भोजन खा लेते थे। याज्ञवल्क ने स्पष्ट लिखा है कि उच्च वर्ग के व्यक्ति अपने किसान, नाई, ग्वाले या परिवार के शूद्र मित्र का भोजन कर सकते हैं। इसका यह अर्थ है कि शूद्रों में भी ये जातियाँ अस्पृश्य नहीं समझी जाती थी। ब्राह्मण और स्नातक भी संभवतः कुछ शूद्रों का दिया हुआ पानी पी लेते थे, किंतु वे संभवतः चंडाल आदि अस्पृश्य जातियों का दिया हुआ पानी नहीं पीते थे। नंबर का अस्पृश्यता किसी व्यक्ति के जन्म या व्यवसाय पर ही आधारित थी। जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति दूषित होती तथा जो चरित्रहीन होते थे वे भी अस्पृश्य समझे जाते थे। वशिष्ठ ने नास्तिकों, चुगुलखोर, कृतज्ञ और अत्यंत क्रोधी व्यक्तियों को भी जन्म से चंडालों के समकक्ष माना है। उसके अनुसार जैन आर्यों को चंडालों के संपर्क से बचना चाहिए। उसी प्रकार नास्तिक, चुगुलखोर, कृतज्ञ और अत्यंत क्रोधी व्यक्तियों से बचना चाहिए, अर्थात आर्यों को इनको भी अस्पृश्य समझना चाहिए। नंबर खा, गुप्त काल में वैष्णव धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया। संभवतः इस कारण ब्राह्मणों ने शूद्रों के प्रति कुछ उदारता का दृष्टिकोण अपनाया और उन्हें पूर्णतया अस्पृश्य घोषित नहीं किया। नंबर का स्मृतियों से ज्ञात होता है कि चांडाल साधारणतः गांव के बाहर रहते थे। रात के समय उन्हें नगर या गांव के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। दिन में भी वे उस पोशाक को पहनकर ही गांव में आ सकते थे जो राजा ने उनके लिए निर्धारित कर रखी थी। उच्च वर्ग के लोग उनके स्पर्श से अपवित्र ना हो, इसलिए वे दिन में निर्धारित पोशाक पहनकर ही गांव या नगर में जा सकते थे। याज्ञवल्क का मत था कि यदि चंडाल किसी ब्राह्मण को छू ले तो उसे 100 पर जुर्माना लिया जाए, किंतु यदि अंत सड़क की मिट्टी या पानी को छू ले तो वह स्वयं हवा से शुद्ध हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि याज्ञवल्क का दृष्टिकोण चंडालों के प्रति बहुत कठोर नहीं है। याज्ञवल्क ने यह कहीं नहीं लिखा है कि चंडाल का स्पर्श होने पर उच्च वर्ग के व्यक्ति को प्रायश्चित रूप में कोई धार्मिक कृत्य करना चाहिए। उसने अपवित्र लोगों से छूने पर स्नान करने, कुल्ला करने और गायत्री मंत्र पढ़ने का विधान किया है, किंतु यह स्नान आदि का विधान केवल चंडाल के स्पर्श पर नहीं है, सभी अपवित्र लोगों के स्पर्श पर किया जाता था। इससे ऐसा अनुमान होता है कि गुप्त काल में चंडालों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। बृहस्पति के अनुसार चंडाल को उच्च वर्ण के हिंदू के 16 हाथ से निकट आना वर्जित है। भैयान के वर्णन से भी ज्ञात होता है कि चंडाल नगरों और बाजारों के बाहर रहते थे। जब वे नगर में आते थे लाठी बजाते थे जिससे उच्च वर्ग के लोग उनसे छू न जाए, उनका दर्शन अनिष्ट कर समझा जाता था। नंबर घ, अमरकोश में चंडाल के पर्यायवाची 10 शब्द दिए हैं। इनमें से प्लव, दिवाकीर्ति, जनंगम आदि का उल्लेख इस काल से पूर्व के ग्रंथ में नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस काल में अस्पृश्य जातियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। इस काल में डोमों की अलग जाति बन गई थी, किंतु उन्हें अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। संभवतः चमार अस्पृश्य नहीं समझे जाते थे। अस्पृश्यता के नियम अधिकतर चंडालों के साथ ही लगाए जाते थे। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि किसी अंत या अंत्यावसायी पर पड़ जाए तो उसे पवित्र होने के लिए निर्धारित धार्मिक कृत्य करना चाहिए। नंबर अंगा, अंत्यावासियों के विषय में तत्कालीन समाज में यह धारणा थी कि वे अपवित्र जीवन व्यतीत करते हैं तथा असत्यवादी हैं, चोर हैं, नास्तिक हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं और अकारण दूसरों से झगड़ा करते हैं। इसलिए स्मृतिकारों ने उनके संपर्क से बचने के लिए इतने कठोर नियम बनाए। ये नियम इस काल में सब शूद्रों के लिए नहीं थे, केवल अंतःवासियों के लिए थे। नंबर 5, गुप्तोत्तर काल लगभग 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। इस काल में शूद्रों को गुप्त काल से भी अधिक अंश में उनके सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। पराशर लगभग 600 ईस्वी से 900 ईस्वी तक के अनुसार तेजस्वी पुरुष भी यदि शूद्र का भोजन कर ले उसके साथ संपर्क रखे, उसी आसन पर बैठ जाए जिस पर शूद्र बैठा हो, शूद्र से शिक्षा प्राप्त करे तो वह पतित हो जाता है। एक दूसरे स्मृतिकार का मत है कि कलयुग में ब्राह्मण का शूद्र से भोजन बनवाना निषिद्ध है। तीसरे स्मृतिकार के अनुसार यदि उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति को धर्म क्रिया करते समय कोई शूद्र दिखाई दे जाए तो उसे वह धर्म क्रिया तुरंत बंद कर देनी चाहिए। यदि उस समय उसका शरीर शूद्र के शरीर से छू जाए तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। गार्ग के अनुसार शूद्र का स्पर्श होने पर जाति के उच्च व्यक्ति को पवित्र होने के लिए जल का आचमन करना ही पर्याप्त है। नंबर का गुप्त काल में उच्च वर्ग के व्यक्ति अपने ग्वाले, किसान और परिवार के शुद्ध मित्र का भोजन कर सकते थे। इस काल के स्मृतिकारों का मत था कि उच्च वर्ग के व्यक्ति आपत्ति के समय ही उन शूद्रों का भोजन कर सकते हैं जिनको गुप्त काल में अपवाद के रूप में छोड़ दिया गया था। नंबर 10, इसके कुछ समय बाद इन शूद्रों का भोजन करना कली वर्ज्य घोषित कर दिया गया। ब्राह्मण के घरों में उनके भोजन बनाने के लिए रखना भी काली वज्र ठहराया गया। शूद्र का स्पर्श करने पर प्रायश्चित के रूप में व्रत रखने का विधान किया गया है। इस प्रकार इस काल में शूद्रों को पूर्णतया अस्पृश्य मान लिया गया। हेमाद्री लगभग 1270 ईस्वी से हमें ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों ने वैश्यों का भोजन भी छोड़ दिया क्योंकि उनका शूद्रों से घनिष्ठ संबंध था। नंबर 10, अनेक संकर जातियों की गणना इस काल में शूद्रों में कर ली गई। विहद धर्म पुराण में अम्बष्ट और कारण जातियों के व्यक्तियों को शूद्र कहा गया है। वेद व्यास स्मृति में कायस्थों की गणना भी शूद्रों में की गई है। कुछ स्मृतिकारों का मत था कि अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान की स्थिति शूद्रों के समान होती है। मेघातिथि ने सूत मगध आयोग्य व अस्पृश्य को अस्पृश्य माना है क्योंकि उनकी सत उत्पत्ति स्मृतिकारों के अनुसार सार्पतिलोम विवाह से हुई थी। बृहद्धर्म पुराण में संकर जातियों की संख्या 41 दी गई है, उनमें से 36 की स्त्री शूद्रों के अनुरूप मानी गई है। इसका यह अर्थ है कि इन पुराणों के अनुसार इन 3600 संकर जातियों के व्यक्ति अस्पृश्य थे। इस प्रकार इस काल में स्मृतिकारों ने हिंदू समाज के बड़े भाग को अस्पृश्य घोषित कर दिया। नंबर 10, इस काल में भी चंडाल बहुत निम्न स्तर का कार्य करते थे, जैसे कि ऐसे व्यक्तियों के शवों को ले जाना जिनके कोई संबंधी ना हो या अपराधियों को फांसी देना, वे इस काल में भी अस्पृश्य समझे जाते थे। इस काल के कुछ स्मृतिकारों का मत था कि चंडाल के स्पर्श से दूषित व्यक्ति स्नान करके ही पवित्र नहीं होता, उसे यदि चंडाल के निकट से गुजर भी जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा ही शूद्रों के दिख जाने और उनसे बात करने, उनके खेल तमाशे देखने या उनकी परछाई पार करने पर करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की माता चंडाल होती थी उन्हें मेघातिथि ने सोपाक कहा है। अग्नि पुराण में सोपाक को भी अस्पृश्य माना है। तत्कालीन साहित्य में भी इस मत की पुष्टि होती है कि चंडाल शहर के बाहर रहते थे, नीच काम करते थे और उन्हें अस्पृश्य समझा जाता था। चंडाल की परछाई के विषय में इस काल के स्मृतिकार एक मत नहीं है। अत्रि, अंगिरस, शतातप और औसमस स्मृतियों के अनुसार यदि ब्राह्मण चंडाल की परछाई को पार कर ले तो उसे स्नान करना चाहिए। व्याघ्रपद, पाद और बृहस्पति का मत है कि शूद्र को ब्राह्मण से निश्चित दूरी पर रहना चाहिए, किंतु शिव धर्मोत्तर पुराण मेघातिथि के अनुसार चंडाल की परछाई से कोई व्यक्ति दूषित नहीं होता। नंबर 9 नंबर अंगा वैजयंती कोष 11वीं शताब्दी ईस्वी में धोबियों, चमारों, वेड़, बुरल, मच्छुरों, मेड़ों और भीलों के गणना अन्य जातियों में की है। इनमें वेड़, बुरल, मेड़ और भील तो आदिवासी थे और थे ही शेष तीन धोबी, चमार और मछेरे इसलिए अस्पृश्य समझे गए कि वे नीच व्यवसाय करके आजीविका कमाते थे। पुलिंद, सबर, किरात आदि आदिम जातियां पहाड़ियों और जंगलों में रहती थी। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को मांस अर्पित करती थी। उनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। वे मांस और सुरा का खुद प्रयोग करते थे। विवाह करने के लिए वे अन्य व्यक्तियों की स्त्री को उठा ले जाते थे। उनके ऐसे घृणित कार्यों के कारण वे सभी अस्पृश्य समझे जाते थे। नंबर 4 इस काल के स्मृतिकारों ने अन्य धर्मावलंबियों को भी पतित माना है। उनके अनुसार बौद्ध, जैन, लोकायत, नास्तिक, कपिल के अनुयायी, शैव और वाम मार्गी सक्त सभी अस्पृश्य थे। ब्राह्मण पुराण के अनुसार शैवों, पशुपातों, लोकायतों आदि का स्पर्श करके प्रत्येक उच्च वर्ग के व्यक्ति को वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। दित्य हरित का मत था कि शैवों का स्पर्श होने पर या शैव या बौद्ध मंदिर में प्रविष्ट होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करके पवित्र होना चाहिए। नंबर 4 अस्पृश्यता के इस विवेचन का अंत हम पांडुरंग वामन काणे के निष्कर्ष से कर रहे हैं। उनका मत था कि प्राचीन धार्मिक साहित्य में चंडाल आदि की अस्पृश्यता के अतिरिक्त निम्नलिखित वर्ग के व्यक्ति अस्पृश्य समझे जाते थे। नंबर 1 बड़ा पाप करने वाला व्यक्ति जो जाति से निकाल दिए जाते थे और अस्पृश्य समझे जाते थे, किंतु यह व्यक्ति प्रायश्चित करने पर दोष से मुक्त हो जाते थे और अस्पृश्य नहीं रहते थे। नंबर 2 कुछ नास्तिक संप्रदाय के अनुयायी अस्पृश्य समझे जाते थे, जैसे कि कौटिल्य ने लिखा है कि बौद्धों को श्राद्ध में आमंत्रित ना किया जाए। नंबर 3 वे व्यक्ति जो धन की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करने का ढोंग रचते थे। नंबर 4 कुछ ऐसे वनस्पतियों को बेचने वाले व्यक्ति आलस्य भोजन में प्रयोग नहीं करते थे। नंबर 5 रज 16 स्त्री मासिक धर्म के दिनों में अस्पृश्य समझी जाती थी। नंबर 6 शव को ले जाने वाले व्यक्ति अस्थायी रूप से अस्पृश्य समझे जाते थे। नंबर 7 कुछ विदेशों को अपवित्र समझा जाता था और वहां से आने वाले व्यक्तियों को अस्पृश्य मूल्यांकन। आज के वैज्ञानिक युग में गंदे से गंदा काम स्वच्छता से किया जाता है, अतः किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अस्पृश्य समझना भारी भूल है। किंतु हिंदू समाज आदि अपनी उन्नति चाहता है तो उसे इस सभी व्यक्तियों को जो अभी तक अस्पृश्य जातियों में उत्पन्न होने के कारण अपने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रहे हैं उनके सभी अधिकार दे देने चाहिए। हमारी सरकार ने इस कलंक को दूर करने के लिए अनेक नियम बनाए हैं और इन व्यक्तियों के रहन सहन और खान पान में पहले की अपेक्षा बहुत स्वच्छता पाई जाती है, किंतु अब भी भारत के अनेक प्रदेशों में अस्पृश्य कहलाने वाले व्यक्तियों को सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार नहीं मिले हैं। उन्हें सवर्ण व्यक्तियों के कुएं से पानी खींचने का अधिकार नहीं है। मंदिरों में प्रवेश करके वे देवता की पूजा भी नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि इन भाइयों को ये अधिकार दिलाकर हिंदू समाज के इस कलंक को दूर करने में पूर्ण योगदान दें।